अब यहाँ तक बात करके अल्लाह के नूर की, और वो नूर कहाँ मिलता है बंदे मोमिन के दिल में, तो अगला सवाल है कि बंदे मोमिन कहाँ मिलते हैं। तो कहाओ, अब तुम्हें बताते हैं कि बंदे मोमिन का महल क्या है। फी बुयूत नज़ीनल्लाहु अन तुरफा व युज़्कर फी हस्मुहु, इसके नूर की तरफ हिदायत पाने वाले इन घरों में पाए जाते हैं जिन्हें बुलंद करने का और जिनमें अपने नाम की याद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। युसब्बिहु लहू फीह बिलगदुव्वि वल आसाल, कौन करते हैं इस जिक्र को बुलंद? रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैयुन अन ज़िक्रिल्लाह, ये वो लोग हैं जो सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं और उनकी तिजारत और खरीदो फरोख अल्लाह की याद से, व इकामिस सलाती व ईता इज़्ज़काती, और इकामत नमाज और अदाए ज़कात से इनको गाफिल नहीं करती। क्यों भाई, इनका दिल क्यों मस्जिदों में और अल्लाह के घरों में लगा रहता है, इसकी वजह क्या है? यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अबसार, वो उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल उलटने और दीदे फिरा जाने की नौबत आ जाएगी, यानी आंखें चढ़ जाएंगी ऊपर। ऐसा क्यों होगा? लियज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू, ये सब इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह इनके बेहतरीन आमाल की जज़ा इनको दे, और वयज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, और मज़ीद अपने फ़ज़ल से इनको नवाजे। वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। यहाँ तक अब ईमान वालों की मसरूफियात का तस्करा है कि ईमान वालों के दिल में अल्लाह का नूर है और बड़े कीमती होते हैं ये लोग। कीमती चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं? लॉकर्स में, सेफ्स में। तो जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत का ख़जाना होगा ना, वो दिल बाजारों में नहीं घूमता कि नहीं चोरी ना हो जाऊँ, वो क्लबों की जीनत नहीं होता, वो हर वक्त दुनिया के मेलों ठेलों में नहीं रहता, वो पार्टियों और क्लबों में नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह के घरों में होता है। यहाँ बुयूत का लफ्ज़ आया है, बैत की जमा है, बात है यबीतू से पीछे हम देख चुके। इससे दो मानी लिए गए, नंबर एक बुयूत से मुराद यहाँ मस्जिदें ली गई, और इसी के साथ दूसरा मानी ये कि हर वो जगह जहाँ अल्लाह का काम होता है वो बयूत के अंदर आता है। यानी बंदे मोमिन का दिल ना बाजारों में लगता है, आपका लगता है? बंदे मोमिन का दिल ना मॉल्स में लगता है, ना वो सारा वक्त इस शौक में होता है कि कहाँ कैसे क्या करूं और किस तरह से ये काम करूं, बल्कि सच्चे ईमान वालों का दिल तो अल्लाह के घरों में लगता है। मर्द हैं तो मस्जिदों में उनके दिल लगते हैं, औरतें हैं तो वो ऐसी जगहों पे दिल लगाती है जहाँ से नूर के फवारे फूटें, जहाँ से हिदायत की किरणें आएं। और ऐसे लोगों को ढूंढना है तो जाके ढूंढ लो अल्लाह की मस्जिदों में, सुबह शाम पुकारते हैं वहाँ जाके। अल्लाह ने इजाज़त दी, अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐसे लगता है कि पहले इजाज़त नहीं थी, फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा जाओ कर लो ये काम, ले लो। अज़ीन अल्लाहु, इज़न से अल्लाह ने इजाज़त दे दी। क्या पता चला कि इन घरों में आने की तौफीक भी अल्लाह की मर्ज़ी से मिलती है, हर खास और आम को अल्लाह आने नहीं देता। हम सोचते हैं ना हम नहीं आते या फलां नहीं आता, नहीं, इज़्ज़त नहीं मिला। अच्छा, इज़्ज़त क्यों नहीं मिला? इसलिए कि अल्लाह को खूब पता है कि किसको देना है और किसको नहीं देना, क्योंकि यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। क्या आप बड़े लोगों की पार्टी में हर एक को बुलाया जाता है? कोई बड़ी मीटिंग हो अच्छी, बुलाया जाता है? बड़े बड़े अफसरों की दावतों में हर खासो आम को बुलाया जाता है? नहीं बुलाया जाता ना। तो फिर कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला अपनी इतनी प्यारी चीज़ के लिए हर एक को बुलाए? नहीं, आपको नहीं बुलाया जा सकता, सॉरी। आप देखिए कि ये एक स्टेटस सिंबल होता है ना, बस दफ़ा जगह भी होती है। मसलन आप जहाज़ में जब जाते हैं, आप देखते हैं फर्स्ट क्लास की जो सीट्स होती हैं उसमें बहुत खाली हैं, आपको क्यों नहीं बैठने देते? नहीं, आप नहीं बैठ सकते, आप पीछे बैठे। आप कहते हैं पीछे जगह बड़ी तंग है, मैं आगे बैठ जाऊँ, कहेंगे नहीं आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं आज़ीन अल्लाहु, अल्लाह इजाज़त देता है, फिर लोग इन घरों में आते हैं। आप सब काबिले मुबारकबाद हैं, अल्लाह आपको मुबारक करे, मबरूक उन, क्योंकि कि अल्लाह ने आपको इजाज़त दे दी अपने घर में आने की, और इसमें पीछे पता नहीं क्या आपकी तड़प थी, क्या आपके अल्लाह ताला के साथ ताल्लुकात और मामलात थे, अल्लाह ताला के साथ कैसी आपकी तड़प की बातें थी कि अल्लाह ने कहा कि अच्छा अब इनको मैं इजाज़त देता हूँ। फिर कहा कि अंतुरफा, कि बुलंद किया जाए। इसको थोड़ा सा लफ्ज़ों को देखें तो थोड़ा सा मुगालता आता है कि तुरफा का मानी क्या है। लफ्जी मानी देखें तो रफा, बुलंद करना, उठाना। इससे एक मतलब है बनाना, तामीर करना। पीछे हम पढ़ चुके हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बैतुल्लाह बनाने के लिए जब लफ्ज़ आया था तो क्या आया था, व इज़ यरफ़ इब्राहीम अल कवाइद मिनल बैत, और जब उठा रहे थे इब्राहीम घर की बुनियादें। तो एक मानी क्या है, रफ़ा से मस्जिद का बनाना, अल्लाह के घरों को बनाना, तामीर करना, उसका इंतज़ाम चलाना, देखना। दूसरा रफ़ा का मानी क्या है कि हर तरह की नजासत से बुलंद किया जाए इनको, ऐसे काम किए जाएं जिससे ये जगह चमकने लगे। एक एक तिनके को उठाया जाए, एक एक नैपकिन को उठाया जाए, गंदगी को उठाया जाए, ये मस्जिदें खूबसूरत हो जाएं, ये अल्लाह के मुकाम जाए ये खूबसूरत तरीके से होने लगें। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुमने इन जगहों का हक अदा किया। बस जब अल्लाह ताला ट्रायल के लिए भी कुछ लोगों को कुछ जगह देता है, वो देख रहा होता है तुम क्या करते हो। हम तो खुश हो रहे होते हैं ना कि चलो खैर है, मनमानी है, लेकिन अल्लाह ताला फिर वो इज़्ज़त वापस ले लेता है, या फिर वो जगह वहीं की वहीं पड़ी रहती है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग बोर होते हैं और वो फिर आने ही छोड़ते हैं, और वो सारी की सारी तहरीक दम तोड़ देती है। याद रखें, जिस तरह बुनियादें अहम होती हैं ना, इस तरह अल्लाह के घरों के इब्तदाई दिन बड़े अहम होते हैं। हर बंदे का रवैया उस काम के फलने फूलने, बढ़ने कम होने में मुमिद्दो मुआविन भी होता है और उसके रास्ते की रुकावट भी होता है। बस सिर्फ एक अमल की वजह से पूरा सिलसिला रुक जाता है। जैसे एक छोटी सी चेन टूट जाए ना तो साइकिल रुक जाती है, ट्रेन रुक जाती है, बैटरी का तार उतर जाए तो गाड़ी नहीं चलती ना। इसी तरह अल्लाह ताला के घरों को जब तक इंसान पूरे हक के साथ ना चलाए ना, तो अल्लाह ताला फिर उसकी इजाज़त नहीं देता, लाइसेंस मनसूख हो जाता है। तो अन तुरफा का लफ्ज़ बड़ा अहम है कि इन घरों को उठाओ, इनको इनका ड्यू हक दो, इनकी रिस्पेक्ट दो, इनको तामीर करो, इनको बुलंद रखो, इनके साथ अच्छे मामलात रखो। अल्लाह के नबी सल्लम की चंद रिवायत आपसे शेयर करूँगी। आप ख़ास तौर पे अपनी तालीमी इदारे को सामने रखते हुए सुन सकते हैं, क्योंकि हम भी सब अल्लाह के नाम पे यहाँ जमा हुए हैं ना, और हमारी कोशिश यही होती है ना कि हम जब भी यहाँ हों तो इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें किसी भी सूरत में। तो ऐसी जगहों की अल्लाह ताला की नज़रों में क्या वक़्त है। एक रिवायत है हज़रत अनस की, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से मोहब्बत रखना चाहता है, इसको चाहिए कि मुझसे मोहब्बत करे, साथ ही साथ अपने आप को पूछा करे मैं चाहती हूँ, और जो मुझसे मोहब्बत रखना चाहते हैं, इसको चाहिए कि मेरे सहाबा से मोहब्बत रखे, यानी नबी सल्लम से और उनके सहाबा से फिर, और जो सहाबा से मोहब्बत रखना चाहे, इसको चाहिए कि कुरान से मोहब्बत करे, है मोहब्बत, और जो कुरान पाक से मोहब्बत करे, इसको चाहिए कि वो उन जगहों से मोहब्बत करें जो इस कुरान के लिए मुख्तस हैं, क्योंकि वो अल्लाह के घर हैं, अल्लाह ने इनकी तज़ीम का हुक्म दिया है और इसमें बरकत रखी है, वो भी बाबरकत हैं और उनके रहने वाले भी बाबरकत हैं, वो भी अल्लाह की हिफाजत में हैं और उनके रहने वाले भी हिफाजत में हैं, वो लोग अपनी नमाजों में मशगूल होते हैं, अल्लाह उनके काम बनाते और हाजतें पूरी करते हैं। लगता है आपको आपके काम अल्लाह करते हैं, आपकी हिफाजत करते हैं, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करते हैं? फरमाया, और वो इन घरों में होते हैं और अल्लाह ताला इनके पीछे इनकी चीज़ों की हिफाजत करते हैं। कुर्तुबी की रिवायत है, चीज़ों की करते हैं तो घर वालों की भी करते हैं, बच्चों की भी करते हैं। यकीन करें, हम अल्लाह के साथ जितना जुड़ते जाएंगे ना, अल्लाह हमारे काम उतने खुद अपने हाथ में लेगा। जैसे इम्तिहान के दिनों में माँ कहती है ना, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारा नाश्ता भी बना देती हूँ, तुम और पढ़ लो और सो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े भी इस्त्री कर दूंगी। बस इसी को सामने रख लें, हम जब वाकई ज़िंदगी को एक इम्तिहान का समझते हैं ना, और हम अल्लाह के काम करते हैं। बस दफ़ा आप किसी का काम करने लगते हैं ना तो लोग आपका शुरू करते हैं, आपका बच्चा पकड़ लेंगे, आपकी चीज़ें पकड़ेंगे, अच्छा आप हमारा काम कर रहे हैं, हम आपका करते हैं। तो इंसान तो इंसानों का कितना को करेंगे। आप सोचिए कि अल्लाह जब बंदे के काम करे, वल्लाही आप वो काम कर ही नहीं सकते अपने जो अल्लाह आपके काम करेगा। आपके बच्चों के रिश्ते अल्लाह ने सोचे हुए हैं, मत उनकी फ़िक्र करें। आपकी बेटियों के घर अल्लाह ने बसाने हैं, मत सोचें। आपका किराया, आपके घर, खाना पीना, आपकी जॉब, आपकी पढ़ना, आपका स्टेटस, आपका कैरियर, सब उस मालिक के हाथ में, वहाँ से आना है। मेन सोर्स वो है। एक दफ़ा आप अपनी ज़िंदगियाँ उसके नाम पे लगा के तो देखें, ऐसी कैफियत आएगी कि आप अपने ऊपर रश्क ना करें। तो मेरी इस बात को कहीं भी लिख लें, आके बाद में पूछ लें कि आपने तो हमें बड़े ख्वाब दिखाए थे, हमें तो नहीं मिले। मैं तो वो कहती हूँ जो मैंने महसूस किया, वल्लाही मैं तो ऐसे महसूस करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे ये काम छीन ना लेना, अगर थोड़ा सा मैं कर रही हूँ या तू करवा रहा है, क्योंकि अज़ीन अल्लाह, ये अल्लाह का इज़्ज़त है। किसी के हसद करने से, किसी के ब्लैक पोलिंग से कभी अल्लाह ताला उस काम को नहीं छुड़वाएगा, क्योंकि अल्लाह ने जब इज़्ज़त दे दिया, जब अल्लाह किसी के काम करवाना चाहे तो कोई क्यों ना करे। कह के देखें अल्लाह तू करवा, बस डर ये है कि किसी दिन नोटिस ना भेज देना, कोई ले ऑफ का सर्टिफिकेट ना आ जाए, बस मेरी कोई ऐसी हरकत ना हो कि जो मुझे तेरे इस काम से रोक दे। फिर आप देखिए कि तुरफा के अंदर इन जगहों को साफ़ सुथरा रखने के लिए अहादीस हैं, सुनते जाइए। और वाकई मैं सोचती हूँ कि ऐसी चीज़ों को आम करने की कितनी ज़रूरत है। हदीस में आता है कि मस्जिद में जब कोई निजासत लाई जाए तो मस्जिद इससे इस तरह सिमटती है जैसे इंसान की खाल आग से सिमटती है। अल्लाहु अकबर। अबू सईद अल-खुदरी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस शख्स ने मस्जिद में से नापाकी और गंदगी और ईज़ा की यानी तकलीफ़ देने वाली चीज़ को निकाल दिया, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देंगे। ये इब्ने माजा की रिवायत है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि हम अपने घरों में भी मस्जिदें यानी नमाज पढ़ने की मखसूस जगह बनाएँ और उनको पाक साफ रखने का अहतमाम करें। कुर्तुबी की रिवायत है। तो फिर ये देख लें, हज़रत आयशा की रिवायत तो ऐसी लगता है ना कि जैसे हमारी है। और यहाँ आपको मैंने जो फ़ी बुयूत इनका दो मानी बताए, उसमें दूसरा ये भी है कि ईमान वालों के घर, ईमान वालों के घर भी इससे मुराद हैं। और इनको बुलंद करने से मुराद क्या है कि मुसलमानों के घर दिखें कि ये मुसलमानों के घर हैं, उसमें अल्लाह का ज़िक्र हो, शैतानों की आवाज़ें ना आएँ उसमें से, वहाँ सुबह शाम अल्लाह के नाम की तस्बीहात हों। और बता दिया कि मुसलमानों के घर किसी काहिन के घर नहीं है कि जहाँ दीन को सिर्फ किसी भी चर्च में या किसी माबद खाने में बंद कर दिया। मुसलमानों के घर भी मस्जिदें होते हैं, मुसलमानों के घर भी अल्लाह वाले घर होते हैं। हर घर के अंदर अल्लाह के लिए, अल्लाह के काम के लिए कुछ ना कुछ जगह होनी चाहिए और उनको भी साफ़ रखना चाहिए। बस लोग अपने घर पेश कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। जब भी अल्लाह के काम करने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ी, सच्चे लोगों ने अपने घर नहीं रोके, साल साल के लिए कुछ ने तो पूरे डोनेट कर दिए, कुछ लोगों ने एक डेढ़ साल, कोई एक कोर्स के लिए, कोई दूसरे के लिए। फिर उस घर को वो अपना घर होते हुए भी अल्लाह का घर बनाए, क्या अल्लाह उनके घरों को बुलंद नहीं करेगा? फिर उनके काम, उनकी चीज़ें ऐसी करेगा? फिर इसी तरह देखिए कि यहाँ चूँकि बात हुई तो मस्जिद के नाते से चंद चीज़ें जो मस्जिदों की शान को बुलंद करने और वहाँ के जाने के मैनर्स में हैं, 15 चीज़ें नोट कीजिएगा। मुफस्सरीन ने जमा की हैं कि मस्जिदों का एहतराम कैसे हो। आदाब, आप कह सकते हैं कि मसाजिद या दीनी जगहों के 15 आदाब, जिसमें कुछ ख़ास तौर पर सिर्फ मस्जिद के भी हैं। नंबर एक, मस्जिद में पहुंचने पर अगर कुछ लोगों को वहां बैठा देखें तो उनको सलाम करें, और कोई ना हो तो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन कहना। यानी ये फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ एक अदब है जो कुछ मुफस्सरीन इसको समझते हैं कैसा करना चाहिए। दूसरा, मस्जिद में दाखिल होकर बैठने से पहले 2 रकत तहय्यतुल मस्जिद की नियत से पढ़े, लेकिन शर्त यह कि ये वो वक्त ना हो कि जब नफिल नहीं पढ़ते। तीसरी, मस्जिद में ख़रीदो फरोख्त ना की जाए। नंबर नहीं बोलती, आगे पॉइंट्स लिखते जाएँ, आप नंबर ख़ुद डाल लें। अगली बात, वहाँ पर तीर और तलवार ना निकालें, यानी वेपन्स यूज़ नहीं होंगे। दुख की बात है ना कि आज के दौर में मस्जिदों में भी हथियार उठाए जाते हैं। पांचवी, ये कि मस्जिद में अपनी गुमशुदा चीज़ें तलाश करने का ऐलान ना करें, अल्लाह के नबी की बद्दुआ लग जाएगी वरना। आपने कहा उसकी ऊँटनी कभी ना मिले, जिसने ये कहा कि मेरी ऊँटनी गुम गई है वो ढूंढो। चीज़ें बेचने वाले के माल में कभी बरकत ना हो जिसने मस्जिद में बैठ के चीज़ें बेची। अगली चीज़, मस्जिद में आवाज़ बुलंद ना करे, धीमी आवाज़ों से बात किया करें मस्जिदों में, अल्लाह के घरों में। यहाँ भी आप ब्रेक में हो या कहीं भी हो, आपका अदब, आपकी बात, आपके ब्रेक, आपके आने और जाने से पता चले कि अब अल्लाह का दीन आप सीख रहे हैं। फिर अगली बात है कि वहाँ दुनिया की बातें ना करें, मस्जिद में बैठने की जगह में किसी से झगड़ा ना करें। जहाँ सफ में पूरी जगह ना हो वहाँ घुसकर लोगों में तंगी पैदा ना करें। किसी नमाज पढ़ने वाले के आगे से ना गुजरें। थूकने और नाक साफ करने से परहेज करें। अपनी उंगलियां ना चटकाइए, ये भी हदीस से पता चलता है। अपने बदन के किसी हिस्से से खेले ना, यानी मसलन कोई मर्द है तो दाढ़ी के बालों से खेल रहा है, औरत है तो अपने बालों की नोकों से खेलती रहे। फिर नजासात से पाक साफ रहे, और किसी छोटे बच्चे या मजनू को साथ ना ले जाएं ताकि वहाँ दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। और 15वीं बात यह कि वहाँ कसरत से अल्लाह ताला के जिक्र में मसरूफ रहे। हम क्या मस्जिदों को समझते हैं, एक हड़बोंग मची होती है मस्जिदों में जब फैमिलीज आ जाती हैं, ऐसे लगता है कि न जाने क्या बात है। फिर मस्जिद में लहसुन और प्याज खाकर जाने को, उसे भी अल्लाह के नबी ने मना किया। जब वो लहसुन और प्याज नहीं खा सकते, एक शख्स को आपने देखा, सही मुस्लिम की रिवायत है हज़रत उमर से कि एक शख्स के मुंह से लहसुन या प्याज की बू आ रही थी, तो अल्लाह के नबी ने उसको वहां से निकाल कर बकी में भेज दिया, कहा जिसको भी खानी है इसको खूब पका कर इसकी बदबू दूर करके खाए। आप बताइए फिर सिगरेट के बारे में क्या हुक्म है? सिगरेट पी के मस्जिद में जाना क्या लहसुन खा के जाने से ज्यादा तकलीफ देह नहीं है? हुक्का, पान, तम्बाकू, इसलिए इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। इसीलिए बाज़ कहते हैं कि कोई ऐसी बीमारी है कि जिससे दूसरों को दुख तकलीफ़ हो, तो ऐसे शख्स को भी फिर थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। फिर इसी तरह पाक करने में, शिर्क से पाक, गंदी चीज़ों से पाक। बाज़ लोगों ने रफ़ा मस्जिद से मुराद ये लिया है कि मस्जिदों को अच्छे तरीके से, मतलब ज़ाहरी तौर पर पुरशिकोह किस्म की जाहो जलाल वाली बनाई जाए। इसी से इस्तदलाल लेके हज़रत उस्मान ने मस्जिद नबवी की तामीर में साल की लकड़ी से काम करवाया था, क्योंकि अल्लाह के नबी के दौर में यहाँ लकड़ी नहीं थी लगी हुई। तो हज़रत उस्मान के दौर में फिर थोड़ी सी तरमीम हुई, तो पूछा गया क्या करें ना करें, क्योंकि अब लोगों के घर अच्छे बनते जा रहे थे। आज भी कुछ लोग जाते हैं तो इतराज़ करते हैं कि जी मस्जिद नबी इतनी खूबसूरत क्यों है, तो वजह यह कि अल्लाह को पता है, अब एयर कंडीशन घरों में से लोग जा रहे हैं और उनको ऐसे अच्छे कारपेट की आदत है, अगर उसी शक्ल में मस्जिद नबी होती तो शायद आज भी लोग सिर्फ चंदा ही दे के बाहर आ जाते, अंदर ना जाते। तो लिहाजा इसी से इस्तदलाल लिया गया। फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने भी मस्जिद नबी में जो नक्शो निगार बनवाए और उसकी तामीरी खूबसूरती का अहतमाम किया, वो इसी आयत से लिया। फिर इसी तरह से बाज के दौर के बादशाहों ने जो बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाईं, वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने ज़माने खिलाफत में दमिश्क की एक जामे मस्जिद बनवाई, आज भी कहते हैं कि वो मौजूद है, और कहते हैं कि पूरे मुल्क शाम की सालाना आमदनी से 3 गुना ज़्यादा माल खर्च किया था उस वक़्त, और कहते थे कि अल्लाह का घर है, हम इस पर क्यों ना लगाएं। तो अब क्या हुक्म है? तो इसके बारे में ये है कि अगर नीयत शो ऑफ की, दिखावे की, और ऊंचे मीनार और हमारे मिंबर लंबे हैं, ऐसी नीयत नहीं होनी चाहिए। साफ तो रखें, डिसेंट हो, लेकिन इस तरह की उसमें खूबसूरतियाँ और लगा देनी के जो इबादत में खलल हो, उससे मना करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस आयत के साथ हम शेयर कर सकते हैं। मसलन चंद बातें, फ़ायदे की खातिर, वक्त तो गुजर ही जाना है लेकिन फ़ायदा हो जाए तो बेहतर है, कि ऐसी जगहों में जाने वालों को अजर क्या मिलता है। अबू दाऊद की एक रिवायत है अबू उमामा से, नबी सल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने घर से वजू करके फ़र्ज़ नमाज के लिए मस्जिद की तरफ निकला, उसका सवाब उस शख्स जैसा है जो अहराम बांध कर घर से निकला हो। सोचिए ज़रा कितनी तड़प है अहराम बांध के जाने की, और मस्जिदों की तरफ नहीं जाते हमारे मर्द, और इल्ला माशाल्लाह। और जो शख्स नमाज इशराक के लिए अपने घर से वजू करके मस्जिद की तरफ चला, तो इसका सवाब उम्रा करने वाले जैसा है, और एक नमाज के बाद दूसरी, बशर्ते कि इन दोनों के दरमियान कोई काम या कलाम ना करे, तो इल्लियीन में लिखी जाती है। और हज़रत बुरैदा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जो लोग अंधेरे में मसाजिद में जाते हैं, इनको क़्यामत के रोज़ मुकम्मल नूर की बिशारत सुना दें। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। फिर इसमें भी है कि मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ता है मर्द, सही मुस्लिम की रिवायत है अबू हुरैरा से, کہ مرد کی نماز با جماعت ادا کرنا یعنی گھر میں یا دکان میں نماز پڑھنے کی نسبت 20 سے زیادہ درجہ افضل ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص وضو کرے اچھی طرح سنت کے مطابق پھر مسجد میں نماز کی نیت سے جائے تو کوئی غرض اور اگر نہ ہو تو ہر قدم پر اس کا مرتبہ ایک درجے بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے۔ پھر جب وہ نماز کے انتظار میں رہے گا تو اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہے گا اور فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما اور اس کی مغفرت فرما جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ ضرورت ہے ایسی روایتیں بیٹوں کو اور بھائیوں کو اور شوہروں کو بتانے کی؟ روایتیں رغبت والی بتایا کریں جس سے ان کو شوق پیدا ہو، ڈرانے والی باتیں نہ بتایا کریں۔ حکم بن عمیر سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو اور مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ اور اپنے دلوں کو رقت کی عادت ڈالو، یعنی نرم دل ہوں تمہارے، کیوں اتنی بڑی لگژریس لائف کے پیچھے اپنے آپ کو گناہ گار کرتے ہو، تھوڑے پہ گزارا کر لو اور اللہ کی نعمتوں پر کثرت سے تفکر اور غور کیا کرو اور بکثرت اللہ کے خوف سے رویا کرو۔ لگتا نہیں کیا یہ سارا کچھ امت مسلمہ سے نکل گیا؟ ہماری پوری کیوں نہیں پڑتی؟ کبھی غور کیا؟ ہم اللہ کے گھروں کی فکر کرنے سے زیادہ اپنے گھروں کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اپنے کی ہو تو کہتے ہیں نہیں نو پرابلم۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو مہمانوں کی طرح رکھو اپنے آپ کو، اور اپنے دل اللہ کے گھروں سے لگا لو۔ ایسا نہ ہو کہ خواہشات دنیا تمہیں اس حال سے مختلف کر دیں کہ تم گھروں کی فضول تعمیرات میں لگ جاؤ جن میں رہنا بھی نہ ہو، اور ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاؤ اور مستقبل کے لیے ایسی فضول تمناؤں میں مبتلا ہو جاؤ جو پا نہ سکو۔ ہے آج کے مسلمان کی کہانی الا ماشاءاللہ۔ حضرت ابو درداء اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، کہتے تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو سنا ہے کہ مساجد متقی لوگوں کے گھر ہیں، متقیوں کے گھر ہیں۔ اللہ نے اپنے گھر کے نا فی بیوتن، جس شخص نے مساجد کو کثرت ذکر کے ذریعے اپنا گھر بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت و سکون اور پل صراط پر آسانی سے گزارنے کا ضامن ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور ابو صادق عرضی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو خط لکھا کہ مسجدوں کو لازم پکڑو، کیونکہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مساجد ہی انبیاء کی مجالس تھیں، یعنی نبی جو تھے وہ مسجدوں میں ہی بیٹھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آخری دور میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آ کر جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے اور وہاں دنیا ہی کی اور اس کی محبت کی باتیں کریں گے۔ تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مسجد میں آنے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں جو شخص مسجد میں بیٹھا گویا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا ہے، اس لیے اس کے ذمے ہے کہ زبان سے سوائے کلمہ خیر کے اور کوئی کلمہ نہ نکال لے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اب ایسے ہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریفیں فرماتے ہیں کہ جو ایسے جگہوں پہ جاتے ہیں وہاں جا کے کرنا کیا ہے اور کس طرح ہے۔ فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ رجال ہیں جن کو ان کی تجارتیں اور ان کے کاروبار، ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روک لیتی۔ مطلب کیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہاں جانے سے اس لیے نہیں رکے رہتے کہ جاب پہ چھٹی نہیں ملتی، جمعے کی تو مل جائے گی باقی دن کی نہیں ملے گی، اور گاہک آئے ہوئے تھے نہیں۔ یہ تو میں کہتی ہوں کہ اتنی زیادہ یعنی دکھتی بھی رگ ہے نا مسلمان مردوں کے لیے آج کے دور میں، خاص طور پہ جب ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، کیا کریں پھر چھٹی نہیں ملتی، کیا کریں پھر کاروبار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بتا دو کہ ان کی یہ ساری چیزیں ان کو روکتی نہیں ہیں اس چیز سے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں ایک خاص گروہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کے بیٹے سالم فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے ملکوں میں بھی ایسا ہو، تو فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو نہیں روکتی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں دو صحابی تھے، ایک تجارت کرتے اور دوسرے صنعت و خرفت یعنی لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بنا کر بیچتے۔ پہلے صحابی کی تجارت کا حال یہ تھا کہ اگر سودا تولنے کے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو وہیں ترازو کو पटक कर नमाज के लिए खड़े हो जाते, और दूसरे का हाल ये था कि अगर गरम लोहे पर हथौड़े की ज़र्ब लगा रहे होते और कान में आवाज़ अजान की आ जाती, तो अगर हथौड़ा कंधे पे होता तो वहीं कंधे के पीछे थोड़ा डालकर नमाज को चल देते, और उठाए हुए होते तो हथौड़े की ज़र्ब से काम लेना भी गवारा ना करते। उनकी तारीफ में यह आयतें नाजिल हुई। दिल नहीं चाहता इस रिजाल के नीचे हम सबके मर्दों के नाम लिखे हों, हमारे भाइयों के। फिर औरतों को पर्दे करने आसान होंगे, फिर औरतों को इस्लाम के मुताबिक जीना आसान लगेगा जब मर्दों के दिल मस्जिदों में लगेंगे, नमाजों में लगें, फिर उनकी निगाहें पाक होंगी। और आप देखें कि सहाबा करम अक्सर तिजारत पेशा थे, बिजनेस माइंडेड थे, तिजारत करते थे, काम करते थे, हाथ का काम था, लेकिन इनको नहीं रुकती थी ये चीज़ें। सूरत जुमा में इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम कि एक ऐसा मौका आ गया था कि जिस पे फिर अल्लाह ताला ने पूरी सूरत नाजिल कर दी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसी ही तड़प दे, और ये माओं का काम होता है बेटों को ऐसे कामों पर लगाना। जब माँ फजर के लिए बच्चे को उठा देगी ना, 7-8 साल के बच्चे को, क्योंकि माँ उठी है, यकीन करें बाकी 4 नमाजों के लिए भी बच्चा खुद कोशिश करेगा। हम अपनी नींद ख़राब नहीं करना चाहते, तो उसके नतीजे में फिर बच्चे भी पीछे होते हैं। और याद रखें, ये काम है मुश्किल, लेकिन आसान किसको लगेगा? ये सारे काम, नमाजों का कायम करना, ज़कात का देना, आसान किसको होगा? यखाफून ततकल्लबु फीहिल कुलूब, जिनके दिल डरेंगे उस दिन से कि जिस दिन दिल उलट पुलट होंगे, वल अबसार, और आंखें भी तलपट हो जाएंगी। जैसे आप कबाब को फ्राई करते हैं ना, एक साइड पक जाती है तो दूसरी साइड ऊपर करते हैं, क़यामत के दिन इतना खौफ होगा कि लोगों के दिल तलपट हो रहे होंगे, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, एक धड़का लगा होगा। लियज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू, फिर अल्लाह इनको जजा देगा अहसन की जो उन्होंने अमल किए। क्या था इनका अमल अहसन? अल्लाह के घरों में दिल लगाना, काम धंधे से ज़्यादा इन चीज़ों पर नज़र डालना। और सिर्फ अहसन नहीं देगा, देखिए लियज़ियहुमुल्लाह के बाद अहसना मा अमिलू क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा लियज़ियहुमुल्लाहु मा अमिलू, अल्लाह बदला दे जो उन्होंने किया? अहसन कह के कैद लगा दी, क्या कि उनके आमाल में से जो बेहतरीन आमाल थे ना उसकी दी। यानी इसकी एक बहुत खूबसूरत तफसीर मैंने पढ़ी, पीछे आपको बता भी चुकी हूँ, एक और जगह पे यही बात थी। मसलन सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ते रहे, किसी एक दिन बड़ी अच्छी नमाज पढ़ी आसन दर्जे की, तो कहा अल्लाह उसकी सारी नमाजों को उस आसन दर्जे की नमाज के बराबर अजर उसको देंगे। टूटी फूटी आधे दिल की नहीं, पूरे दिल से, क्योंकि इंसान नेकी कोई भी करता है ना तो कभी बहुत ही दिल से करता है और कभी थोड़ी सी कमी करता है, तो बहरहाल अल्लाह ताला फिर उनको उसमें दे के फिर भी इसके ऊपर क्या है, वह यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, अपने फजल से ज़्यादा दे। ये तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई सरप्राइज़ गिफ्ट है, अल्लाह सुभान व तआला अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हैं कि अब मैं बाकी चीज़ें तुम्हें अपनी मर्ज़ी से दूंगा, क्योंकि तुमने भी तो मेरी मर्ज़ी से अपने कामों को किया था ना। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें ऐसा बनाए। इसी तरह की आयत हमने पीछे पढ़ी है ना सूरह मोमिनून में, कि वो सब कुछ करते हैं, देते हैं, और उनके दिल क्या है, वक़ुलूबुहुम वजीलतुन, उनके दिल डरते रहते हैं। तो ये है वो एक हकीकी मोमिन जिसके दिल में अल्लाह का नूर आ चुका होता है। अल्लाह के नूर की मोहब्बत दिल में आए तो ऐसी शख्सियात पैदा होती हैं। और वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, क्यों रिस्क की फ़िक्र करते हो? क्यों कहते हो कि अगर दुकान बंद कर दी तो बिक्री कम हो जाएगी, अगर टैक्सी कहीं रोक दी नमाज के वक्त में तो कस्टमर चला जाएगा, जॉब से छुट्टी ली तो ले ऑफ हो जाएंगे? कुछ नहीं होता, खैरु राज़िकीन वो है। अब यहाँ तक अब एक स्ट्रेच में तिलावत सुनते हैं, और आंखें बंद करें या खुली रखें, लेकिन अपने बारे में गौर करें, अपने घर के बारे में, और साथ साथ चुपके चुपके अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिलों में तेरी मोहब्बत का नूर आ जाए।
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب.